हरे कृष्णा, तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं परम पूजनीय गुरु प्रसाद स्वामी महाराज। एक संक्षिप्त परिचय, महाराज का जन्म यूएसए में हुआ और महाराज ने न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद महाराज को विज्ञान में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा और फिर वो महाराज का यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जहाँ पे उनका पहला संपर्क हुआ हरे कृष्णा भक्तों से, और उसके बाद महाराज ने मिलिट्री सर्विसेज में गए, जहाँ पर इस्कॉन के संपर्क के द्वारा वास्तविकता में महाराज का जीवन परिवर्तित हुआ। जैसे ही महाराज ने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की, उसके बाद महाराज ने फुल टाइम ज्वाइन किया इस्कॉन को, और महाराज ने 1976 में जब मायापुर वृंदावन फेस्टिवल में आए भारत में, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त की, और 1982 में महाराज ने संन्यास दीक्षा प्राप्त की, और तब से लेकर अब तक महाराज विशेषकर कोस्टा रिका टेम्पल, सेल्वेदर, गुटमेला, होंडुरस, पनामा, बेलिजिल, कोस्टा रिका, निकारुगिया, कोलंबिया, त्रिनिदाद, टोबागो, वेनेजुएला, इन सभी जो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में जितने देश हैं वहाँ पर महाराज प्रचार कर रहे हैं। और महाराज का विशेष रुचि रहती है कि भक्तों को सपोर्ट करने में, कि किस प्रकार से वो ओपन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कर सके। महाराज की साइट भी है gpswami.org, जो इंग्लिश, स्पेनिश, पोर्टुगीज तीन भाषा में उपलब्ध है। तो आइए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर महाराज का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हम स्वागत करते हैं महाराज के साथ आए इस क्रिस गोवर्धन धारी प्रभु का भी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो 5th चैप्टर टेक्स्ट 1-5।
श्रीमद् भागवतम से पाठ 9वां स्कंध 5वां अध्याय श्लोक 1-5। तो जो पहले 4 श्लोक हैं उनका अनुवाद इस प्रकार है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक उत्पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। अत्यंत दुखित होने के कारण वह राजा के समक्ष लौट गए और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। श्लोक संख्या 2। जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो वह अत्यंत लज्जित हो उठे, और जब उन्होंने ये देखा कि दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे दयावश और भी अधिक संतप्त हो उठे, अतः उन्होंने तुरंत ही भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। श्लोक संख्या 3। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो तथा तुम सारे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो, तुम जल, पृथ्वी तथा आकाश हो, तुम पांचों इंद्रिय विषय, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध हो, और तुम ही इंद्रियां भी हो। श्लोक संख्या 4। हे भगवान अच्युत के परम प्रिय, तुम 1000 अरो वाले हो। हे संसार के स्वामी, समस्त अस्त्रों के विनाश करता, भगवान की आदि दृष्टि, मैं तुमको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया करके इस ब्राह्मण को शरण दो तथा इसका कल्याण करो।
त्वं धर्मस्य
धर्मं
त्वं
त्वं
वित्तं
वित्तं
सत्यं
सत्यं
त्वं यज्ञो
यज्ञो
अखिल यज्ञ भूक
अखिल यज्ञ भूक
त्वं
त्वं
लोकपाल
लोकपाल
सर्वात्मा
सर्वात्मा
त्वं तेजा
तेजा
पुरुषं
पुरुषं
परम
परम
Tam dharmastam ritam satyam.
Tam dharmastam ritam satyam.
Tvam yagyo kila yagya bhuk.
Tvam yagyo kila yagya bhuk.
Tvam lokapala sarvatma.
Tvam lokapala sarvatma.
Tvam teja purusham param.
Tvam teja purusham param.
Tvam dharmastam ritam satyam.
Tvam dharmastam ritam satyam.
Tvam yagyo kila yagya bhuk.
Tvam yagyo kila yagya bhuk.
Tvam lokapala sarvatma.
Tvam lokapala sarvatma.
Tvam teja purusham param.
Tvam teja purusham param.
Tvam dharmastam ritam satyam.
Tvam ritam satyam.
Tvam yagyo khila yagya bhuk.
Tvam yagyo khila yagya bhuk.
Tvam lokapala sarvatma.
Tvam lokapala sarvatma.
Teja purusham param.
Tvam teja purusham param.
Tvam dharma.
Dharma.
Tvam.
Tvam.
Ritam.
Prena
prat kathan. Satyam. Charam satya. Tvam.
Tum.
Yagya.
Yagya.
Akhila.
Sare
Vishvaka.
Yagya
bhuk. Yak se utpan faloka
bhokta.
Tvam.
Tum.
Lokapalaha. विभिन्न लोकों के पालन करता सर्वात्मा
सर्व्यापी
त्वं
तुम
तेजः
तेज
पौरुषम
भगवान का
परम
दिव्य
अनुवाद हे सुदर्शन चक्र तुम धर्म हो तुम सत्य हो तुम प्रेरणा प्रद कथन हो तुम यज्ञ हो तथा तुम ही यज्ञ फल के भोक्ता हो तुम अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो और तुम ही भगवान के हाथों में परम दिव्य तेज हो तुम भगवान की मूल दृष्टि हो अतएव तुम सुदर्शन कहलाते हो सभी वस्तुएं तुम्हारे कार्यकलापों से उत्पन्न की हुई हैं, अतएव तुम सर्वव्यापी हो तात्पर्य सुदर्शन शब्द का अर्थ है शुभ दृष्टि वैदिक आदेशों से पता चलता है कि यह संसार भगवान के दृष्टिपात से उत्पन्न हुआ सा एक्षत सा असृजत भगवान ने महातत्व पर दृष्टि डाली और जब वह विशुद्ध हुआ तो सारी वस्तुएं उत्पन्न हो गईं। कभी कभी पाश्चात्य दार्शनिक सोचते हैं कि सृष्टि का मूल कारण पिंड का विस्फोट था यदि कोई इस पिंड को संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व तत्व माने तो वह समझ सकता है कि यह पिंड भगवान की चितवन से विशुद्ध हुआ और इस तरह भगवान की चितवन की इस सृष्टि का मूल कारण
So here we see the attitude of a Vaishnava.
तो यहाँ पर हम एक वैष्णव का दृष्टिकोण देखते हैं
Srila Prabhupada says in the introduction to Nectar of Instruction that this Nectar of Instruction is meant to help us have the right attitude.
शिला प्रभुपाद उद्देश्यामृत के जो भूमिका उसमें लिखते हैं कि इस ग्रंथ का उद्देश्य है कि एक वैष्णव का जो सही दृष्टिकोण है उसको कैसे विकसित करें
And this is the essence of the of a Vaishnav behavior.
और ये एक वैष्णव व्यवहार का सार है
What is your motive?
आपका क्या उद्देश्य है
Our attitude reflects our motive.
हमारा जो दृष्टिकोण है हमारे उद्देश्य का प्रतिबिंब है
Why am I serving Krishna?
मैं क्यों भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ
What do I want to get?
मैं उनसे क्या प्राप्त करना चाहता हूँ
It's like we were discussing in Vrindavan the prayers of Prahlad Maharaj.
जैसे कि प्रहलाद महाराज की जो स्तुति है उनसे हम चर्चा कर रहे थे वृंदावन में
And he declared to the Lord, I don't want anything in return.
और उन्होंने भगवान से कहा कि मैं मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए बदले में
If you give me something in return, then I will feel like that I'm I'm making some business exchange.
अगर मैं आपसे बदले में कुछ मांगता हूँ या आप मुझे देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे कोई व्यापार कर रहा हूँ.
Even Prahlad Maharaj, from the very beginning of his prayers, he was already anticipating the Lord would offer him some blessing and he was negating it.
और प्रहलाद महाराज स्तुति के प्रारंभ से ही यह अपेक्षा कर रहे थे कि भगवान उनको जरूर कुछ देना चाहेंगे और वह शुरुआत से ही मना कर रहे थे.
He actually said, the only thing I want is your service birth after birth.
और उन्होंने कहा कि एकमात्र चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो है आपकी सेवा जन्म जन्मांतर.
Of course, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, you cannot approach the Supreme Lord without wanting something.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur कहते हैं कि आप भगवान को प्राप्त उनकी तरफ नहीं आगे बढ़ सकते बिना उनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा के.
Because just like in the verse we read, these qualities of Sudarshan, which are also qualities of Krishna, because everything is coming from Krishna.
और जैसा कि आज के श्लोक में हमने सुदर्शन चक्र के गुणों के बारे में सुना और ये गुण भगवान के ही गुण हैं क्योंकि अंततः सारे चीजें भगवान से ही आ रही हैं.
त्वं यज्ञो अखिल यज्ञ भूक अखिला. Everything about Krishna is akila, is universal. It's always applicable.
त्वं यज्ञो अखिल यज्ञ भूक अखिला. भगवान के विषय में सारी चीज अखिला है, परम सत्य है.
So there's nothing outside of the purview or the scope of Krishna.
और कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं है.
Just like Krishna says, aham sarvasya prabhu mata sarvam prabhatate, that everything spiritual and material is coming from me.
जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सारे आध्यात्मिक और भौतिक चीजें मुझसे ही उद्गम होती हैं.
And the only thing that is without outside of the range of Krishna is our attitude.
और एकमात्र चीज जो भगवान कृष्ण से बाहर है वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण.
That is the one thing that we have full control of.
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पे हमारा पूरा नियंत्रण है व्यक्तिगत.
If Krishna forced upon us a certain attitude, then we would be just like robots.
अगर भगवान कृष्ण हमें मजबूरी में कोई एटीट्यूड हम पर थोपते, दृष्टिकोण थोपते, तो हमारा जो अस्तित्व है एक रोबोट के समान होता.
And the only person that can really teach us what kind of attitude we can have is the Vaishnava.
और एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो हमें वास्तविकता में सिखा सकते हैं कि सही नजरिया क्या है, सही दृष्टिकोण क्या है, वो है वैष्णव.
And therefore Chaitanya Mahaprabhu said that sarvasanga namakirtan bhagavata shravana, that five things he said, madhura bhasha, shimurti na shodhaya, that these five things, association with Vaishnavas, chanting the holy name, hearing the Bhagavatam, living in a holy place, and worshipping the deity.
और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये पांच चीजें बताई, हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवतम का पाठ, भक्तों का संग, एक परम मथुरा वास और अर्च विग्रहों की आराधना.
And they are in that order of importance. And that is the order of their importance.
और ये जो ऑर्डर है इसकी महत्वता के हिसाब से उन्होंने बताया.
The first thing he said was sadhu sangha. We must associate with devotees because from there we will be able to know with what mentality I chant the holy name.
उन्होंने कहा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है साधु संघ, क्योंकि साधु संघ में हमें पता चलता है कि मैं किस मानसिकता से भगवान के नामों का जप करूं.
And by having the proper degree of attention in chanting, and by purification from association, we can hear the Bhagavatam properly.
और सही मात्रा में ध्यान देने पर हरिनाम में और जो शुद्धिकरण होता है संघ से, तब मैं श्रीमद् भागवतम पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा.
Sometimes we have a mechanical attitude. We're just doing number 1, 2, 3, 4. We go through the day like this. No, I have to do this now. 7:15 I do this. 7:45 I do this. No.
कभी कभार हमारा जो दृष्टिकोण होता है बहुत ही यांत्रिक होता है, बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से हम चीजों को करते हैं कि 7:15 बजे ये करूंगा, फिर 7:45 ये करूंगा और इस तरह.
Even though the activity, the external activity may seem like the same, the internal activity should always be increasing.
हालांकि हो सकता है कि बाह्य रूप से जो मैं कार्य कर रहा हूं वो हर दिन एक ही है, बिल्कुल समान दिखे, परंतु जो आंतरिक हमारा दृष्टिकोण है उसको विकास निरंतर चलते रहना चाहिए.
As Mahaprabhu says in Shikshastikam, Anandam Buddhivardhanam, that the spiritual consciousness should always be increasing more and more.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा आनंदम बुद्धि वर्धनम, जो आध्यात्मिक चेतना है उसका जो विकास है वो निरंतर चलते रहना चाहिए.
Devotional service cannot be stagnant. Either you're increasing or you're decreasing.
भक्ति में सेवा स्थिर नहीं रह सकती, या तो वो बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी.
Srila Prabhupada, when the first time he was in New York City, he had to take the subway, he didn't know which way to go.
श्रीला प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, सबवे रास्ते पे जाना था तो उनको पता नहीं था कि किस रास्ते से जाना है.
Just like if you go to the metro station, they say this way, Delhi, that way, something else. You know?
जैसा कि आप मेट्रो स्टेशन पे जाओ उसमें लिखा होता है यहाँ पे दिल्ली और इस तरफ कुछ और.
So also we have to know in what way I will direct my consciousness.
तो उसी प्रकार से मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस दिशा में अपनी चेतना को आगे बढ़ाऊँ.
And the consciousness follows the mind.
और जो चेतना है वो मन के पीछे चलती है.
So you have to give direction to the mind.
तो इसलिए आपको मन को निर्देश देना होगा.
This is the attitude.
ये नजरिया है.
It's like Prabhupada said, you cannot take a taxi. You just get in the taxi and say, all right, let's go. No.
तो जैसे श्रीला प्रभुपाद उदाहरण देते थे, ऐसा नहीं है कि आपने टैक्सी बुक की, उसमें बैठे और कहा चलो.
Okay, but taxi driver would be very happy. Just drive around and charge you money, you know, and no problem.
जो टैक्सी ड्राइवर होगा वो बहुत खुश होगा, आपको बस इधर उधर घुमा के अपना बिल बढ़ाता रहेगा.
So Maya is also, she accommodates us as taxi driver, you know, for the mind. And you want to wander around and get, okay, I'll take you.
तो माया देवी भी उस टैक्सी ड्राइवर की तरह आपको बैठाती है. अच्छा आप घूमना चाहते हैं, मैं तुम्हें घुमाऊंगी, पूरा हर जगह घुमाऊंगी.
But her price is very expensive. No.
और उनका जो बिलिंग होता है बहुत ही महंगा है.
Birth after birth, taking one body after another.
जन्म जन्मांतर एक के बाद एक शरीर ग्रहण करना.
So the attitude is the one thing that belongs to us. It's our responsibility.
तो जो ये नजरिया है, दृष्टिकोण है, ये एक ऐसी चीज है जो वास्तव में हमारी है और मैं इसके लिए पूरा जिम्मेदार हूँ.
And it's the one thing having which, in having a proper, having the proper attitude, we can make Krishna come under our control. Not that we want to do that, but Krishna wants to do that.
और अगर हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल सही हो तो ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं कृष्ण को वश में कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण को वश में करना चाहता हूँ, पर कृष्ण खुद ही वश में आना चाहते हैं.
In the previous chapter, the Lord Vishnu emphasized this to Durvasa Muni.
पहले के अध्याय में भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को ये बात पर बल देके कहते हैं.
He said, "Aham bhakta paradino yasvatantri bhadvi cha sadubhir grast sadavo bhaktar bhakta jana priya." He said that. Durvasa Muni, you're asking me to do something that I cannot do.
तो उन्होंने कहा दुर्वासा मुनि को कि आप मुझे एक ऐसा कार्य करने के लिए कह रहे हो जो मैं नहीं कर सकता.
My heart is controlled by the devotees.
मेरा हृदय भक्तों के द्वारा नियंत्रित होता है.
I am under his control.
मैं उनके नियंत्रण में हूँ.
And what to speak of my devotee? The devotee of my devotee is even more powerful.
और मेरे भक्तों की बात तो क्या कहें, मेरे भक्तों का भक्त ज्यादा शक्तिशाली होता है.
He was also teaching that you cannot be Krishna's devotee unless you are a ragatmika devotee. No.
तो वो ये सिखा रहे थे कि आप कृष्ण भक्त तब तक नहीं हो सकते जब तक आप रागात्मिका भक्त ना हो.
The ragatmika devotees are those devotees who represent a group under Krishna's under Krishna's service.
Ragatmika bhakt wo hai jo ek aise bhakton ke samuh ke antargat Krishna ki seva karte hain.
Nanda Maharaj, Yashoda Mayi, Shrimati Radharani. There are certain devotees who lead other groups of devotees.
Shama kare jo Nanda Maharaj, Yashoda Mata, ye aise jo bhakt jo anya bhakton ka netritva karte hain.
But actually, all of them are under Srimati Radharani.
परंतु ये सारे भक्त भी श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत हैं।
But she feels like that she is under everyone else.
परंतु श्रीमती राधा रानी को कैसा लगता है? उन्हें लगता है कि वो सारे अन्य भक्तों के अंतर्गत हैं।
So actually, no one feels independent.
तो वास्तव में कोई भी स्वतंत्र अपने आप को महसूस नहीं करता।
And even though it declares in the beginning of the Bhagavatam that Krishna is Swarat, but he's also says, I am completely dependent upon my devotee.
हालांकि श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में कृष्ण को स्वराट कहा गया है, परंतु वो भी अपने भक्तों के नियंत्रण में होते हैं।
And then Krishna told Durvasa Muni that even my own transcendental bliss, I cannot enjoy it without my devotees.
और भगवान कृष्ण दुर्वासा मुनि को कहते हैं यहाँ तक कि मेरा जो पूर्ण दिव्य आनंद है उसको भी मैं अपने भक्तों के बिना उसका अनुभव नहीं कर पाता।
Just like we sing to Lord Damodar, Namamishwaram Sachit Ananda Rupam, that he is the personification of Ananda.
हम दामोदर अष्टकम में ये स्तुति करते हैं नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम कि वो सच्चित आनंद के विग्रह हैं।
But he says, without my devotee, I have no desire to enjoy my own opulence.
परंतु यहाँ पर वो कहते हैं अपने भक्तों के बिना मेरी कोई इच्छा नहीं होती अपने ऐश्वर्य का भोग करने की।
And therefore that tendency is within us. Prabhupada said again and again that no one likes to try to enjoy independently of others. We always want to have someone with whom we can share our enjoyment.
और भगवान के इसी जो प्रवृत्ति है इसलिए हम सब जीवों में भी ये प्रवृत्ति है कि हम जो आनंद है उसको अकेले नहीं अनुभव करना चाहते हमेशा हम संग को ढूंढते हैं।
Even Arjuna declared in Bhagavad Gita, he said, Krishna, what is the use of killing all these family members if who will we enjoy it, whatever we gain, the spoils of what we gain, who will we enjoy it with?
और अर्जुन यही बात भगवत गीता में भी कहते हैं उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि अगर मैं इन सब अपने परिजनों को मार दूंगा तो मैं अगर राज्य मिल भी गया तो मैं किसके साथ उसका आनंद अनुभव करूंगा।
And then Lord Vishnu said that my devotees have sacrificed everything for me, therefore how could I ever give them up?
और भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं तो ये कैसे संभव है कि मैं उनको छोड़ दूं?
Otherwise, Krishna is saying, if you offend my devotee, I cannot do anything because if I do that, then I'm betraying my devotee.
और अन्य शब्दों में भगवान कृष्ण कहते हैं अगर आप मेरे भक्तों के प्रति अपराध करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगा तो इसी प्रकार है कि मैं अपने भक्तों को धोखा दे रहा हूं।
Sometimes a devotee will even forgive someone, but Krishna doesn't forgive them.
हो सकता है कई बार भक्त किसी को क्षमा कर दे परंतु भगवान क्षमा नहीं करते।
Of course, Krishna usually obeys the desire of his devotee, but if the offense is too grave, then even he will not, even though his devotee wants that person to be spared, he will not do so.
हालांकि भगवान कृष्ण जो अपने भक्त की जो इच्छा होती है उसका सम्मान करते हैं परंतु अगर अपराध बहुत ही घोर अपराध है और भक्त क्षमा भी कर रहा है फिर भी भगवान कृष्ण क्षमा नहीं करते।
Just like the Nawab and the Qazi who had called Haridas Thakur, they offended him so greatly, and Haridas he said, I don't want anything to happen to them, but Krishna chastised them.
जैसे नवाब काजी इन्होंने जब हरिदास ठाकुर के प्रति इतना अपराध किया और हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से मैं नहीं चाहता इनके साथ कुछ बुरा हो फिर भी भगवान चैतन्य ने उनको बहुत डांटा।
But he didn't chastise. He did not chastise the people who were torturing.
परंतु उन्होंने उन लोगों को नहीं डांटा जो जो हरिदास ठाकुर पे चाबुक चला रहे थे
because they actually begged the mercy from Haridas Thakur
क्योंकि जो चाबुक मार रहे थे हरिदास ठाकुर को उन्होंने बाद में हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की थी भीख मांगी थी
they said to him we can see you're a saintly person but if you don't die we will die so what can we do
तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि हम देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही संत पुरुष हैं परंतु अगर आप नहीं मरेंगे तो हम मर जाएंगे तो हम क्या करें
तो हरिदास said no problem I will die
तो हरिदास ठाकुर ने कहा कोई समस्या नहीं है मैं मर जाऊंगा
of course he didn't die but he looked like he was dead
और निश्चित रूप से वो मरे नहीं परंतु ऐसा दिखा कि वो मर गए
and even though the nawab he could see that Haridas was a pure devotee But still, because he did not stop the Qazi for trying to keep his own position, then he was also chastised.
और नवाब ने भी रोका नहीं कि किस प्रकार से जो अपने जो position है वो बनाए रखने के लिए उनको ये मार पड़ने दी तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत डांटा.
So why is Krishna or Lord Vishnu so insistent upon chastising an offender even if the devotee doesn't want that offender to be chastised
to bhagwan krishna ya vishnu is baat par kyon date rehte hain ki jo unke bhakt ke prati apradh karta hai usko kuch na kuch dandit kiya jana chahiye halanki bhakt usko shama karna chahta hai
and also in this case There are two devotees involved in with Durvasa Muni.
और इस केस में भी देखते हैं दो भक्त सम्मिलित हैं दुर्वासा मुनि के संदर्भ में.
Because there's Ambarish Maharaj and Sudarshan Chakra.
Ambarish Maharaj और Sudarshan Chakra.
So also Sudarshan Chakra has an order from the Lord. You must chastise this Muni.
Sudarshan Chakra को ये निर्देश प्राप्त है भगवान से कि तुम्हें इस मुनि को दंडित करना है
and the lord said i cannot because my devotee if he sees that my devotee is offended he will defend the devotee so sudarshan he's defending ambarish maharaj
क्योंकि वो देखते हैं कि अगर मेरे भक्त के प्रति अपराध हुआ है तो जो सुदर्शन चक्र है वो उन भक्त की रक्षा करते हैं और यहाँ पर वो अम्बरीश महाराज की रक्षा कर रहे हैं।
So actually, we see that the most powerful person here, more powerful than Sudarshan Chakra and more powerful than the Lord Himself, is Ambarish Maharaj.
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुदर्शन चक्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली और भगवान विष्णु से भी ज़्यादा शक्तिशाली उनके भक्त अम्बरीश महाराज हैं।
And what is the special power that he has?
और ये उनकी विशेष शक्ति क्या है उनके पास?
We see that Ambarish Maharaj he had humility.
हम देखते हैं अम्बरीश महाराज के पास विनम्रता है.
Even in the Christian tradition, there was one of the greatest Christian philosophers, Saint Augustine. He said there are three very important things to be successful in spiritual life.
जो Saint Augustine Christian ट्रेडिशन में जो संत हैं वो आते हैं उन्होंने कहा कि तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए
He said, first is humility, second is humility, and third is humility.
पहला है विनम्रता दूसरा विनम्रता और तीसरा विनम्रता
So this is such an important attribute for the devotee.
तो ये एक भक्त का इतना महत्वपूर्ण गुण है
Because the essential characteristic of a devotee is surrender.
क्योंकि जो भक्त का जो वास्तविक प्रकृति है वो है शरणागति.
But for in order that there is surrender, there must be humility.
परंतु शरणागति होने के लिए विनम्रता होना आवश्यक है.
A proud person can never surrender to the supreme.
एक घमंडी व्यक्ति कभी भी शरणागत नहीं हो सकता.
So, but we see, therefore we see Maharaj Ambarish's humility. When Durvasa Muni, who just offended him, tried to kill him. No, he didn't just offend him, he tried to kill him.
तो यहाँ पर हम अम्बरीश महाराज की विनम्रता देखते हैं यहाँ दुर्वासा मुनि हैं जिन्होंने उनकी जान लेना चाहिए सिर्फ उनके प्रति अपराध नहीं किया परंतु जान से मारना चाहा.
And why did Durvasa Muni? There are two reasons why Durvasa Muni was angry or was upset with Ambarish Maharaj.
और दुर्वासा मुनि क्यों इतने क्रोधित थे अम्बरीश महाराज से इसके दो कारण हैं.
Anyone know what those two reasons are?
आप में से किसी को पता है वो दो कारण क्या हैं?
One of them is revealed in the past time in the previous chapter.
पिछले अध्याय में एक कारण तो बहुत स्पष्ट रूप से आता है.
Well, yes, but why? What did Durvasa Muni think that Ambarish Maharaj did wrong?
Durvasa Muni ne aisa kya socha ki Ambarish Maharaj ne ye cheez galat ki hai?
Yes, yeah. He broke his fast. But this is the external reason. What was the internal reason?
तो एक कारण जो बताया विष्णु स्वरूप प्रभु ने. His fame was spreading all over the world, and Durvasa Muni was envious of that fame. That although he's a householder, he is getting more famous.
Yeah, this is the internal reason. The Srila Prabhupada revealed this, that Durvasa Muni is thinking, I'm the greatest sadhu, and here's an ordinary grihastha. He's thinking, and he's more famous than me. How can this happen?
तो ये जो माताजी ने बताया बिल्कुल सही कारण है. दूसरा जो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दुर्वासा मुनि सोच रहे थे कि सबसे महान साधु तो मैं हूँ और यहाँ पर एक साधारण गृहस्थ भक्त है और उसका यश चारों ओर फैल रहा है जो राजा है.
This is how dangerous pride is.
तो घमंड है कितना खतरनाक है.
You can be the most learned Brahman, you can be the most austere brahmachari, you can be the greatest scholar. But if you have pride, just like I was mentioning the other day, sometimes we're proud of our humility. So then you won't make any advancement.
So, chahe aap sabse pandit brahman ho, aur chahe aap sabse tapasvi brahmachari ho. ये आपका ज्ञान बहुत ज्यादा हो परंतु अगर आपको घमंड है जैसे महाराज बता रहे हैं. मैं उस दिन कह रहा था कभी कभी लोगों को अपनी विनम्रता का घमंड होता है तो उससे आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे.
Not only will you not make advancement, but you will commit offenses.
और ऐसा नहीं है कि प्रगति नहीं कर पाएंगे बल्कि उल्टे अपराध और कर बैठेंगे.
Now if any of us who are conditioned souls, if we would have seen Durvasa Muni or someone who's offending us get chastised, we would think it's about time.
तो अगर हम देखते कि दुर्वासा मुनि का जो व्यवहार है या कोई हमारे प्रति अपराध कर रहा है तो हम क्या सोचते समय समय की बात है.
Because we think that we are Vaishnava.
क्योंकि मैं सोचता कि मैं वैष्णव हूँ.
But Ambarish Maharaj didn't think he was a Vaishnava.
परंतु अम्बरीश महाराज ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं वैष्णव हूँ.
He thought he was an aspiring Vaishnava. He was doing service under the protection of his guru.
तो उन्होंने सोचा कि मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो सेवा करते थे अपने गुरु के निरीक्षण में.
Therefore, real humility is developed by following the parampara.
तो इसलिए जो वास्तविक विनम्रता है वो विकसित होती है परंपरा के अनुगत होकर.
As soon as you think that I am something other than dasa dasa anudasa, then pride will arise within the heart.
जैसे ही आप स्थिति से हल्का सा इधर उधर होते हैं अगर आप ये नहीं सो अपने आप को दासों के दासों का दास नहीं समझ रहे कोई और पहचान करते हैं तो तुरंत हृदय में जो झूठा अहंकार है वो उत्पन्न हो जाएगा.
Ambarish Maharaj was so humble that he almost made it impossible for Durvasa Muni to rectify his offense.
अम्बरीश महाराज इतने विनम्र थे कि उन्होंने लगभग असंभव बना दिया दुर्वासा मुनि के लिए कि वो अपने अपराध को बदल सके.
But because he knew that the Lord told Durvasa Muni that you have to go surrender to him, then he had to accept it.
परंतु क्योंकि वो जानते थे कि भगवान विष्णु से उनको ये निर्देश प्राप्त है कि आप अम्बरीश महाराज के पास जाइए और शरणागत होइए तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया.
And he also knew that I have to accept this because otherwise Durvasa Muni will be harmed.
और वो ये भी जानते थे कि मुझे उनको स्वीकार करना होगा अन्यथा उनको बहुत हानि पहुंचेगी.
So just see the humility of a devotee. Someone is offending him, someone's trying to kill him, and he's thinking that how can I benefit this person?
तो यहाँ पर एक भक्त की विनम्रता देखिए. एक तरफ वो व्यक्ति है जो उनके प्रति अपराध कर रहा है, उनको जान से मारना चाहता है, और वो क्या सोच रहे हैं कि किस प्रकार से मैं इस व्यक्ति का हित कर सकूं?
So just like if we're trying to preach or we're trying to distribute books, we're trying to tell someone about Krishna consciousness, we have to have this degree of surrender and this degree of humility. Otherwise, we won't be successful. Because everyone will resist.
तो अगर हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम इस प्रकार का शरणागति नहीं है, या इस प्रकार की विनम्रता नहीं है, तो हम अपने प्रचार कार्य में सफल नहीं होंगे, क्योंकि जब प्रचार करने जाएंगे, हर कोई रेजिस्ट करेगा.
We're telling people, we're trying to just like if what would happen if you sell someone a product that nobody wants.
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आप एक ऐसी वस्तु बेचने का प्रयास कर रहे हैं जो कोई नहीं चाहता?
Just like if I go to someone's door, I say, "Excuse me, I have some poison. You can drink it and you'll die. Would you like to buy some?" No.
इसी प्रकार से अगर आप किसी दरवाजे पर जाएं, नॉक करें कि मेरे पास आपके लिए जहर है, इसको लेते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या आप इसको लेंगे?
So distributing Bhagavad Gita is like that. No. This will kill your all of your opportunities to enjoy this world independently of Krishna. No.
तो भगवत गीता वितरित करना भी ऐसा ही है कि ये आपके जितने भी आशाएं हैं इस भौतिक जगत को भोगने की, भगवान कृष्ण से स्वतंत्र होकर उसको सब खत्म कर देंगे.
But in spite of that, the devotee is so determined to benefit someone else, even if they resist, even if they refuse, even if they insult us, we will continue to strive to give them the nectar of Krishna consciousness.
परंतु भक्त इतना दृढ़ होता है, चाहे कोई इसको ना लेना चाहे, चाहे वो उसके बदले हमारा अपमान कर दे, परंतु फिर भी एक भक्त ये दृढ़ होता है कि किस प्रकार से मैं इस भक्त का भला कर सकूं.
एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट इट मींस टू बी सरेंडर्ड टू कृष्णा.
इसलिए ये अर्थ है भगवान कृष्ण को शरणागति का.
Krishna in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he wants everyone to have this transcendental knowledge.
और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सबका यही चाहते हैं कि वो इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाएं.
So it doesn't matter what I want. What is important? What does Krishna want?
तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं.
And therefore Krishna says in Bhagavad Gita, ananyaschintayantamam ye janah paryupasyate te shamnityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. I will give everything to my devotee when he shows by his attitude on, that ananyaschintayantamam is consciousness totally free from any other motive other than pleasing me.
तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं अपने भक्त को सब कुछ प्रदान करूंगा जब वो अपना ये दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, नजरिया, अनन्यस चिंतयंतो माम, अन्य किसी भी प्रकार के हेतु से मुक्त एकमात्र भगवान कृष्ण की शरणागति.
एंड व्हेन ही इज परिपासते नॉट ओनली डज ही हैव एन इमेजिनेटिव एटीट्यूड बट ही शोस इट बाय परिउपासते. ही इज ऑलवेज वर्शिपिंग मी.
और परिउपासते ऐसा नहीं कि ये कोई कल्पना का विषय है, जब वो वास्तविकता में मेरी आराधना कर परिउपासते वर्शिप करके दे.
एंड नित्य अभियुक्तानाम एंड ही डजंट डू दिस ऑन संडेज और थर्सडेज. ही डज इट 24 आवर्स अ डे.
और नित्य अभियुक्तानाम ऐसा नहीं कि सिर्फ रविवार या थर्सडे को ये करता है, प्रतिदिन 24 घंटे.
I can give everything to my devotee.
तो इसलिए मैं अपने भक्त को सब कुछ प्रदान कर देता हूँ.
So therefore, Ambarish Maharaj, he's not thinking that, well, let Durvasa Muni touch my feet and then he'll be excused. No. He doesn't think that his touching his feet has will have any benefit. No.
तो ऐसा नहीं है कि अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं कि ठीक है दुर्वासा मुनि को मेरे चरण स्पर्श करने दो और तब वो उनके साथ सब ठीक हो जाएगा बल्कि वो ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे चरण स्पर्श करके उनका कोई लाभ नहीं होगा
He thinks, let me speak with Sudarshan Chakra. तो वो convince him.
तो वो सोचते हैं कि मुझे सुदर्शन चक्र से बातचीत करने दो उनको कन्विंस करने दो
So in these verses, he begins to glorify Sudarshan Chakra.
और इन श्लोकों में वे उनको गुणगान प्रारंभ करते हैं।
Otherwise, by doing that, he's saying, personally, I have no right to tell you to do anything, but because you are so great with all of these qualities that have been mentioned here, certainly you will listen to me.
तो वो कहते हैं व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई अधिकार नहीं है आपको किसी प्रकार का सलाह या निर्देश देने का। परंतु आप ये आपके इतने सारे महान गुण हैं इसलिए आप इनको क्षमा कर दीजिए
I have no right or ability to tell you anything but because the Lord has asked me to help the Durvasa Muni to become freed from his anxiety therefore I'm begging you on behalf of the Supreme Lord to please take into account his need and please stop pursuing him
मेरी कोई योग्यता या अधिकार नहीं है कि मैं आपको किसी भी प्रकार का निर्देश दे सकूं परंतु क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं दुर्वासा मुनि की सहायता करूं इनकी चिंता से मुक्त होने के लिए इसलिए मैं आपके आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप इनको क्षमा कर दें
एंड ही फुली ग्लोरीफाइज सुदर्शन चक्र व्हिच दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज प्रेयर्स टू सुदर्शन
और अभी हमने इनकी जो प्रार्थना इनकी शुरुआत है वो पूर्ण रूप से सुदर्शन चक्र का महिमा गान करते हैं
दिस आल्सो डेमोंस्ट्रेट्स हाउ ए डिवोटी इज वेरी हैप्पी एंड वेरी कैपेबल ऑफ ग्लोरीफाइंग अनदर डिवोटी अनलिमिटेडली
तो ये भी दिखाता है कि किस प्रकार से एक भक्त एक दूसरे भक्त का गुणगान करने अनंत रूप से गुणगान करने के लिए कितना योग्य होता है
बाय सेइंग अकीला एंड लोकपाला And Sarvatma, that you are the within the existence of everything and everyone. He is recognizing the greatness of Sudarshan Chakra.
Akhila Lokpala. तो इस प्रकार से वो उनका गुणगान करते हैं कि किस प्रकार से वो सारे विश्व का भला करने के लिए उपयुक्त है.
And here also, he's revealing in the particular verse that we read. That we repeated, and Srila Prabhupada is commenting on, of course he's commenting on previous verses also, that you are Jagya and you are Jagya Bhup. You are the instrument by which the Lord can enjoy sacrifice.
तो वो यहाँ पर जो ये श्लोक है इसमें उनको यज्ञ से भी संबोधित करते हैं और यज्ञ भूख से भी ये बताते कि भगवान उनके माध्यम से सारे फलों को भोगते हैं
But he's also in a very indirect way saying to Sudarshan Chakra that because you are sacrifice and the enjoyer of sacrifice therefore you can sacrifice pursuing Durvasa Muni
और indirectly वो ये भी कहते हैं क्योंकि आप यज्ञ हो और यज्ञ भोग भी हो तो जैसे यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस तो आप इनका दुर्वासा मुनि का पीछा करना इसको त्याग दीजिए
इफ यू आर सैक्रिफाइस पर्सोनिफाइड देन देयर इज नो वन हु नोस हाउ टू सैक्रिफाइस बेटर देन यू
तो अगर आप यज्ञ के स्वरूपिमान हैं तो आपसे बेहतर तो और कोई नहीं जानता कि किस प्रकार से क्षमा की जाए
एंड यू आर ऑल्सो लोकपाला यू प्रोटेक्ट द यूनिवर्स देयरफॉर प्लीज प्रोटेक्ट दिस दुर्वासा मुनि
और यहाँ का लोकपाला क्योंकि आप विभिन्न लोकों के पालन करता है तो आप दुर्वासा मुनि के भी पालन करता है
एंड बिकॉज यू आर सर्वात्मा यू कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड दैट हिज हार्ट इज प्योर ही जस्ट मेड अ मिस्टेक
और क्योंकि आप सर्वात्मा हैं तो आप ये जान सकते हैं कि उनका जो हृदय है वास्तव में शुद्ध है उनसे एक छोटी गलती हो गई
एंड बिकॉज यू आर तेज परुषम परम बिकॉज यू आर the prowess or the ability of the Lord to do something, The Lord wants to forgive him, so therefore please do it. No.
और क्योंकि आप तेज पौरुषम परम हैं कि भगवान के जो पौरुष भगवान हैं उनके तेज हैं तो आप जानते हैं कि भगवान इनको क्षमा करना चाहते हैं इसलिए आप भी ऐसा करें।
You are religion and you are truth, and just as previously Lord Brahma instructed Priyavrata that and the Lord himself instructed him that you shouldn't kill Indra because this would be against the principles of religion and the principles of satyam or the absolute truth.
तो यहाँ पर कहा धर्म और सत्यम जैसा कि पिछले हम पढ़ते हैं कि पृथु महाराज को उन्होंने कहा कि आप इंद्र को ना मारें क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है.
And also because you are rittam, you are encouraging statements. You have to encourage Durvasa Muni not to chastise him. No.
और क्योंकि आप रितम यानी प्रेरणाबद्ध कथन है तो इसलिए आप उनको प्रोत्साहित कीजिए उनको मारिए मत.
So here we see the ability of a devotee to be able to encourage someone and to be able to address Sudarshan in the best possible way so that Sudarshan himself feels that yes, I must stop.
तो यहाँ पर हम एक भक्त का गुण देखते हैं उसकी योग्यता देखते हैं कि अन्य भक्त का किस प्रकार से वो गुणगान कर सकता है और इनके गुणगान को सुन के सुदर्शन चक्र को ये महसूस हो कि हाँ मुझे इनको क्षमा करना है.
Even Prahlad Maharaj also encouraged Nrisimhadev. He said, "You already killed the demon, so why, please give up your anger. The demigods are in anxiety."
अब प्रहलाद महाराज भी भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि आपने असुरों का तो वध कर ही दिया है इसलिए आप अपना क्रोध को शांत कर लीजिए सारे जो देवतागण हैं बहुत भयभीत हैं.
So he's saying to Sudarshan that you are causing such anxiety to the saintly person. He just made a little mistake, tried to kill me, that's all.
तो वो सुदर्शन चक्र को यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इतने संत पुरुष के चिंता के इतने बड़े कारण बन रहे हैं उनसे छोटी सी गलती हो गई भूल हो गई वो सिर्फ मुझे मारना ही चाहते थे.
What is the harm of killing an insignificant person when this great saint can give so much benefit to the whole universe?
तो एक तुच्छ नगण्य व्यक्ति को मारने में क्या जा रहा है जब ये इतने महान संत पुरुष पूरे विश्व का इतना बड़ा कल्याण कर सकते हैं.
If I have to die for the benefit of others, what is the problem?
अगर मुझे मरना भी पड़े पूरे विश्व कल्याण के लिए तो इसमें क्या समस्या है?
But because the Lord has causeless mercy, he even someone as insignificant as myself, he's taking me into account.
परंतु क्योंकि भगवान इतने अहद्विती रूप से कृपालु हैं कि चाहे मैं इतना नगण्य या तुच्छ हूँ फिर भी वो मेरा ध्यान रख रहे हैं.
So this is the attitude of this is the attitude of Ambarish Maharaj that makes him such a great devotee that he could personify all the nine processes of devotional service to perfection.
तो अम्बरीश महाराज का ये उनकी शक्ति है ये इतना उनका महिमा है कि वो नवता भक्ति के सारे अंगों का स्वरूपिमान है.
So, and these are some points that I was thinking about in relation to this verse, so I'll stop here.
तो इस श्लोक के संदर्भ में ये कुछ बातें थी जिसपे मैं मनन कर रहा था तो मैं यहीं पर विराम दूंगा.
Any questions or comments?
Thank you, Maharaj. Thank you, Vira. As you mentioned, emphasize the aspect of humility, which Amrish.
You should say it in Hindi and he can translate.
धन्यवाद महाराज जी आपने जैसे विनम्रता के बारे में बताया और आपने ये भी मेंशन किया कि कई बार हम कभी विनम्रता डेवलप करने के प्रयास से भी घमंड प्रवेश कर जाता है या विनम्रता अपनी विनम्रता को लेके भी घमंड हो जाता है. कई बार हमने प्रैक्टिसेस जो करते हैं डिवोशनल प्रैक्टिस उसमें विनम्रता डेवलप करने के लिए कई बार कोई मीनियल सेवा किया या कुछ जप अध्ययन इत्यादि और यही जो प्रयास है यही प्रयास हमारी विनम्रता डेवलप करने के बजाय कई कभी हमें घमंड हमारे अंदर आने लग जाता है इन्हीं प्रयासों की वजह से. तो ये हमारे प्रयास हमारे आध्यात्मिक उत्थान की जगह आध्यात्मिक पतन का कारण बनते हैं। तो कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे जो आध्यात्मिक ये प्रयास हैं ये सही रिजल्ट दें और हमें ये सच में विनम्र बने।
First of all, saying I'm proud of my humility is an oxymoron. You have that word in Hindi, oxymoron? It means two opposing things, they cannot be together. No. I just say that so we see how absurd it is.
So, ye kehna ki main apne vinamrata ke liye garvit hoon, ye bahut hi virodhabhas janak baat hai.
If you have pride, there is no humility.
अगर आप बहुत गर्वित हैं तो विनम्रता वहाँ नहीं हो सकती।
So any devotional practice, if it's actually devotional, devotion means bhakti.
तो कोई भी भक्तिमय कार्य, भक्ति का अर्थ devotion, भक्ति।
Then it cannot give anything but a positive result. Anything except a positive result.
तो अगर वो भक्ति से उत्प्रोत है तो उसमें जो सकारात्मक परिणाम के अलावा और कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही प्राप्त होगा।
It means that what I'm doing may look like bhakti, but it's not really bhakti.
परंतु अगर उसमें भक्ति नहीं है तो उसमें आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा परंतु एक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है बाहर देखने में लगे कि भक्ति है परंतु भक्ति नहीं है।
Rupa Goswami said that bhakti has one very swarup lakshana and one has one swarup characteristic or full characteristic. It must be on anukulena. It must be favorable.
So Rushila Rupa Goswami कहते हैं जो भक्ति का स्वरूप लक्षणों में से एक है anukulena, favorable factors.
And then it has some secondary characteristics, should be free from jnana and karma.
और उसके कुछ तटस्थ लक्षण हैं कि वो ज्ञान और कर्म से मुक्त होने चाहिए।
But even if there's some jnana or some karma mixed in, or some other desires, if it's favorable, this is the most important thing.
परंतु अगर हो चाहे वो ज्ञान और कर्म से थोड़ी मिश्रित भी हो, परंतु उसमें उसका जो मुख्य लक्षण है वो अनुकूल है।
Favorable means that we simply want to please Krishna.
अनुकूल का अर्थ है कि हम बस भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं।
So if that aspect is there, then Krishna will help us get rid of the other interferences.
कि अगर ये अनुकूल, अगर ये है, ये जो स्वरूप लक्षण उपस्थित है उसमें, तो भगवान कृष्ण हमारी सहायता करेंगे, तो बाकी जितने मिश्रण से मुक्त होने के लिए।
But if we're not trying to please Krishna, then it means we're trying to please ourselves, and then Krishna has to give a stronger lesson.
परंतु अगर हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो इसका अर्थ है कि हम अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे, तो फिर भगवान हमें एक कड़ा सबक सिखाएंगे।
That okay? Otherwise, there can be devotional service cannot bring us down. That's the point.
क्योंकि जो भक्तिमय सेवाएं वो हमें कभी नीचे नहीं खींचेगी, नीचे नहीं लाएगी।
Actually, Rupa Goswami says just the opposite, that iha yasya harerda se kamana manasa gira nikila svasya vasta su jivan mukta sa uchate, that if you're performing bhakti properly, it may appear that you are like any other person in this world, but actually you are a liberated soul.
बल्कि वो इसके बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं कि अगर आप वास्तविकता में भक्ति कार्य कर रहे हैं तो बाहर दिखने से हो सकता है कि आपको लगे कि आप संसार में अन्य व्यक्ति की तरह बिल्कुल एक समान व्यक्ति हैं, परंतु आप मुक्त हैं।
If you have bhakti, real bhakti in your heart, then whatever you do, you will do it as an offering to Krishna.
क्योंकि अगर आपके हृदय में भक्ति है, वास्तविकता भक्ति है, तो आप जो भी कार्य करेंगे, वो भगवान को अर्पित, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे.
Even Priyavrata, he was put into the most he was taken from the most favorable circumstance, being in the association of Narad Muni, hearing about renunciation, and put in the most unfavorable circumstance, meaning money, wealth, opposite sex, all these temptations, but he could never forget Krishna.
Maharaj Priyavrata hai, unko sabse anukool paristhiti se uthakar जो नारद मुनि के संग में थे वैराग्य के बारे में सुन रहे थे उनको बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति में डाला गया जहां पर उनको धन से यश और इतने ऐसे अन्य बिल्कुल कारणों से डील करना पड़ता था परंतु क्योंकि वो भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर रहे थे
sometimes Krishna puts his devotee he gives us a test to see not that he has to see he knows he's in our heart But he wants us to see what is the quality of our bhakti.
क्योंकि कई बार भगवान कृष्ण ये देखना चाहते हैं नहीं भगवान कृष्ण हमारे हृदय में उन्हें तो पता है वो चाहते हैं कि हम देखें कि हमारे भक्ति का क्वालिटी क्या है
Krishna doesn't have to test us for himself, he has to test us for ourselves.
भगवान कृष्ण को खुद परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है वो इसलिए लेते हैं कि ताकि आपको समझ आए
everything
कि आप किस स्तर पर हैं
everything is for our benefit
हर चीज हमारे लाभ के लिए है
Krishna says in Bhagavad Gita that Bhakshami Hitakamyaya I am only speaking this for your benefit
भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ये सिर्फ मैं सिर्फ आपके लाभ के लिए बोल रहा हूँ
What benefit do you get from what does Krishna get from coming to the material world he lives in Goloka Vrindavan
तो भगवान कृष्ण को यह भौतिक जगत में आके क्या लाभ होता है वो अपना गोलोक वृंदावन में
नो इवन इन दिस वर्ल्ड समवन मे लिव इन द बेस्ट नेबरहुड नो
इस संसार में भी हो सकता है कि कोई बहुत ही सबसे अच्छे नेबरहुड में रहे
एंड दे मे गो टू द वर्स्ट नेबरहुड नो
देन दे मे गो
टू द वर्स्ट नेबरहुड
और उसके बाद वो बिल्कुल बेकार जगह चले जाए
बट देयर विल ऑलवेज बी सम बेनिफिट फॉर देम Otherwise, you go to the worst neighborhood, then they see me as a politician, I'm worried about the people, or there's some business advantage there. There'll always be some personal benefit.
So, भौतिक जगत में कोई अपना घर बदलता है तो हमेशा उसके लिए कोई ना कोई लाभ होता है या तो वहाँ पे लोग मेरे को बड़े व्यक्ति के रूप में देखेंगे कि मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ या कुछ ना कुछ बिजनेस होगा प्रॉफिट होगा
There's only one benefit that Krishna gets when he comes to the material world, something he gets for himself.
भगवान कृष्ण जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनका खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लाभ होता है.
And this is one of the reasons that the material world exists.
और ये उन कारणों में से है कि जिसके लिए भौतिक जगत का अस्तित्व है.
This is the only place where he can fight. No.
ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर वो युद्ध कर सकते हैं.
We see Lord Vishnu has weapons, no? But he can't use them in Vaikuntha, no?
हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के पास अस्त्र हैं, परंतु वो वैकुंठ में उसका इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं।
So therefore the material world exists so he can come and fight, no?
तो इसलिए भौतिक जगत का अस्तित्व है कि वो यहाँ पर आए और लड़ सके।
Every desire exists in Krishna.
सारी इच्छाएं का जो स्रोत है भगवान कृष्ण में
And this is the one desire that he needs the material world for in order to satisfy.
तो ये एक ऐसी इच्छा है जिसके लिए भौतिक जगत का होना आवश्यक है कि उनकी इस इच्छा की पूर्ति हो सके.
And therefore, all of these erroneous attitudes that we have, it's all indirectly coming from that desire of Krishna.
तो जितने भी हमारे इस अलग प्रकार के नजरिए हैं तो ये वास्तविकता में इनका जो मूल है ये भगवान कृष्ण की वो इच्छा है
But if we're devotees, we're willing to accept that, you know? Just like Jai and Bijai, Krishna wants to fight, let us go, be demons.
परंतु भक्त किस तरह देखते हैं कि जैसे जय और विजय भगवान कृष्ण युद्ध करना चाहते हैं चलो चलते हैं
So we should also be willing to do anything for Krishna.
तो हमें भी सीखना चाहिए भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ करने के।
So here we have a question. You can say it.
महाराज क्या आप भगवान की महिमा का जो प्रचार है उसका महत्व बता सकते हैं ऐसे समाज में जो बहुत विरोध करते हैं या ऐसे देश में जहाँ पे बहुत विरोध है उदाहरण के लिए अन्य धर्म में विश्वास रखने वाले लोग
So actually everything in the material world is antagonistic, no?
वास्तविकता में भौतिक जगत में हर चीज बिल्कुल विपरीत दिशा में है
I was making this point the other day. Sometimes preaching in India can be one of the most antagonistic situations.
मैं उस दिन एक बात बोल रहा था कि भारत में प्रचार करना सबसे विपरीत कार्य हो सकता है.
Because everyone here has some piety. Now most people have some piety.
क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोगों के पास कुछ ना कुछ वो पुण्य है.
They know about the devas. They know something about Krishna.
उन्हें देवताओं के बारे में कुछ पता है कृष्ण के बारे में कुछ सुन रखा है जो गलत नहीं है
and therefore they can be some of the most antagonistic people they will not surrender they only go to a certain point then oh you have to I have to I'm not going to worship Shiva or Durga anymore in my house to get prosperity oh I can't accept that no.
तो वो इस कारण से एक पर्टिकुलर लेवल तक ही जाते हैं उसके आगे पूरा शरणागत नहीं होते कि भगवान शिव और दुर्गा की मैं पूजा अपने घर में नहीं करूंगा भौतिक धन के लिए ऐसे कैसे हो सकता है
So sometimes it doesn't matter where we are there will always be some antagonism in this world
तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसार के कौन से भाग में है हमेशा कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो इसका विरोध करेंगे विपरीत होंगे
Actually, ultimately, antagonism means I don't want to surrender to Krishna, and that's everyone's problem in the material world.
और इसका जो मूलभूत अर्थ क्या है कि मैं भगवान कृष्ण को शरणागत होना नहीं चाहता और यही भौतिक जगत में सबकी समस्या है.
So, doesn't matter where we are. Just that we have a conception what I like and what I don't like. What I don't like, that's antagonistic. And what I like, that's very nice.
तो मैं कुछ चीजें करना पसंद करता हूँ, कुछ चीजें ना पसंद करता हूँ। जो पसंद करता हूँ वो तो ठीक है, जो मैं चीजें ना पसंद करता हूँ वो बिल्कुल वो विपरीत बन जाते हैं।
Therefore, to surrender to Krishna, Lord Chaitanya said, "Anukulyasya sankalpam, pratikulyasya bharajanam." That I should, anyway, that just those words, understand it in Hindi.
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा शरणागति के लिए इनके दो लक्षण हैं जो अनुकूल चीजें उनको स्वीकार करना प्रतिकूल चीजों को त्यागना
We do what Krishna wants and whatever Krishna doesn't want we don't do it
तो हम वही चीजें करते हैं जो भगवान कृष्ण चाहते हैं जो कृष्ण नहीं चाहते वो हम नहीं करते
Maybe not. You ask in Hindi and he'll try. Not with the microphone.
हमारी महाराज ने बोला था कि हमारी जो external activity है that may remain वो same रह सकती है लेकिन जो internal activity है उसको continuously हम इसको increase करना चाहिए तो किस तरह से हम उसको उसमें प्रयास कर सकते हैं किस तरह से उसमें internal activity में प्रयास कर सकते हैं
How we can do that? Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavata Shravana, Mathura Bhasha, Shimurtira Shraddhaya. These five things, Lord Chaitanya said, this is for internal development.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ne paanch cheeze batayi, Sadhu Sangha, Harinam, Bhagavata Shravana.
But we must do it properly. That means we associate with devotees within in a humble mood of I want to serve you, I want to learn from you.
परंतु सही रूप से इन सारे कार्यों को करना भक्तों का संग करें तो सही एक दृष्टिकोण से सही नजरिए से कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपसे सेवा करना चाहता हूँ और आपसे सीखना चाहता हूँ।
Not that we associate with devotees thinking, now you can hear all of my wonderful realizations.
इस तरह से भक्तों का संग नहीं करते कि हाँ अब तुम मेरे सारे अद्भुत साक्षात्कार जो हुए हैं उनको सुन सकते हो।
I will enlighten you. No.
मैं तुम्हें प्रकाशित करूंगा ज्ञान।
That's why I say everything depends on attitude.
इसलिए कहा गया है कि हर चीज हमारे दृष्टिकोण एटीट्यूड पर डिपेंड करती है।
Okay. Okay, I think one more question, otherwise we'll be here all day. No. Maybe that's okay.
हरे कृष्ण महाराज, महाराज हमारे को भी, हम जब इस्कॉन डिवोटीज हैं तो हमें भी थोड़ा सा कभी कभी ये एक घमंड आ जाता है कि हम दूसरे धर्मों से और सुपीरियर है, लाइक भौतिकवादियों से या फिर लाइक मायावादियों से। तो लाइक ये भी एक हमारे अंदर एक कभी कभार हमारे एक उसको हमारी ह्यूमिलिटी को मतलब हमारे थोड़ा सा एक सुपीरियरिटी भी कई बार ये आ जाती है, तो इससे कैसे बचे?
Someone who thinks like that is not really an ISKCON.
कोई ऐसा सोचता है तो वास्तविकता में ISKCON का सदस्य नहीं है।
If you're really an ISKCON, you must have the mood of Srila Prabhupada. No?
अगर आप वास्तव में ISKCON में हैं, तो आपके पास Srila Prabhupada का जो mood है, वो होना चाहिए।
And we see ourselves as the servant of everyone. No?
और हम अपने आप को हर एक के दास के रूप में देखते हैं।
Being in ISKCON doesn't mean that I pay some, I give some donation and I go to the temple every once in a while. That's not being in ISKCON.
ISKCON में होने का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ डोनेशन दें और मंदिर हम कभी कभी आते रहें।
Just like in any of our temples, thousands of people come, you know, and they give a little donation, they bow down before the deity, which is good. But it doesn't make them a follower of Srila Prabhupada.
जैसे कि ISKCON मंदिर में देखते हैं हजारों भक्त आते हैं, कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं, आज विग्रह को प्रणाम करते हैं, सब चीजें अच्छी हैं, परंतु इन चीजों से कोई ISKCON का सदस्य नहीं हो जाता है, वो श्रीला प्रभुपद को अनुयायी नहीं बन जाता।
Therefore, to be in ISKCON is a great privilege because we have to do what Srila Prabhupada said as he said it, not as I want it.
तो ISKCON सदस्य होना बहुत ही बड़ा privilege है, और इसका अर्थ है जैसा श्रीला प्रभुपाद ने कहा वैसा करना, ऐसे नहीं कि जैसा मैं चाहता हूँ।
So we'll stop here. I want to again thank you very much for your kind attention. It's been a privilege to be here trying to serve you in some way.
तो मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, मेरे बहुत आप सबकी सेवा अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।
श्री प्रभुपाद की श्री श्री राधा राधिका रमण की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।
As well as Guru Prasad Swami Maharaj की।